सूर के प्रेम की उत्पत्ति रूप लिप्सा और साहचर्य दोनों का योग है। बाल क्रीड़ा के सखा सखी आगे चलकर यौवन क्रीड़ा के सखा सखी हो जाते हैं। गोपियों ने उद्धव से साफ कहा, लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटे। केवल एक साथ रहते रहते दो प्राणियों में स्वभावतः प्रेम हो जाता है। कृष्ण एक तो बाल्यावस्था से ही गोपियों के बीच रहे, दूसरे सुंदरता में भी अद्वितीय थे। अतः गोपियों के प्रेम का क्रमशः विकास दो प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से होने के कारण बहुत ही स्वाभाविक प्रतीत होता है। बाल क्रीड़ा इस प्रकार क्रमशः यौवन क्रीड़ा के रूप में परिणत होती गई है कि संधि का पता ही नहीं चलता। रूप का आकर्षण बाल्यावस्था से ही आरंभ हो जाता है। राधा और कृष्ण के विशेष प्रेम की उत्पत्ति सूर ने रूप के आकर्षण द्वारा कही है। क खेलत हरि निकसे ब्रजहोरी, गए श्याम रवि तनया के तट, अंग लसति चंदन की खोरी। औचक ही देखी तह राधा, नैन विशाल भाल दिए रोरी। सूर श्याम देखत ही रीझे, नैन नैन मिली परी ठगोरी। ख बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी। देखी ना ही कहूँ ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती। खेलती रहती आपनी पौरी, सुनती रहती श्रवणन नव ढोटा। करत रहत माखन दधि चोरी, तुम्हारी कहा चोरी हम ले हैं। खेलत चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। बातन भुरई राधिक भोरी। इस खेल ही खेल में इतनी बड़ी बात पैदा हो गई है जिसे प्रेम कहते हैं। प्रेम का आरंभ उभय पक्ष में सम है। आगे चलकर कृष्ण गोपियों के मथुरा चले जाने पर इसमें कुछ विषमता दिखाई पड़ती है। कृष्ण यद्यपि गोपियों को भूले नहीं हैं, उद्धव के मुख से उनका वृत्तांत सुनकर ये आंखों में आंसू भर लेते हैं, पर गोपियों ने जैसा वेदनापूर्ण उपालंब दिया है उससे अनुराग की कमी ही व्यंजित होती है। पहले कहा जा चुका है कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में सूर की समता को और कोई कवि नहीं पहुंचा है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं मिलता। वृंदावन में कृष्ण और गोपियों का संपूर्ण जीवन क्रीड़ामय है और संपूर्ण क्रीड़ा संयोग पक्ष है। उसके अंतर्गत विभावों की परिपूर्णता कृष्ण और राधा के अंग प्रत्यंग की शोभा के अत्यंत प्रचुर और चमत्कार पूर्ण वर्णन में तथा वृंदावन के करील कुंजों, लोनी लताओं, हरे भरे कछारों, खिली हुई चांदनी, कोकिल कूजन आदि में देखी जाती है। अनुभवों और संचारियों का इतना बाहुल्य और कहाँ मिलेगा। सारांश यह कि संयोग सुख के जितने प्रकार के क्रीड़ा विधान हो सकते हैं वे सब सूर ने लाकर इकट्ठे कर दिए हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसी बातें भी आ गई हैं जैसे कृष्ण के कंधे पर चढ़कर फिरने का राधा का आग्रह, जो कम रसिक लोगों को अरुचिकर स्त्रीणता प्रतीत होगी। सूर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है। प्रेम संगीतमय जीवन की एक गहरी धारा चलती है जिसमें अवगाहन करने वाले को दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता। राधा कृष्ण के रंग रहस्य के इतने प्रकार के चित्र सामने आते हैं कि सूर का हृदय प्रेम की नाना उमंगों का अक्षय भंडार प्रतीत होता है। प्रेमोदय काल की विनोद वृत्ति और हृदय प्रेरित भावों की छटा चारों ओर झलक पड़ती है। राधा और कृष्ण का गाय चराते समय वन में भी साथ हो जाता है। एक दूसरे के घर आने जाने भी लगे हैं, इसलिए ऐसी बातें नित्य न जाने कितनी हुआ करती हैं। क करी लियो न्यारी हरी आपनी गैया, नहीं न बसात लाल कछु तुमसो, सबै ग्वाल इकठैया। ख धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुँचावत, एक धार जह प्यारी ठाड़ी। मोहन करते धार चलती पै, मोहनी मुख अति ही छवि बाढ़ी। ग तुम पै कौन दुहावे गैया, इत चितवत उत धार चलावत, एही सिखयो है मैया। यशोदा के इस कथन का बार बार तू यहाँ क्यों उत्पात मचाने आती है, राधा जो उत्तर देती है उसमें प्रेम के आविर्भाव की कैसी सीधी सादी और भोली भाली व्यंजना है। बार बार तू यहाँ जनी आवे, मैं कहाँ करो सुत ही नहीं भरजती, घर ते मोही बुलावे। मोसो कहत तो ही बिनु देखे, रहत न मेरी प्राण, छोह लगत मोको सुनी बानी, महर तिहारी आन। कहने का सारांश यह कि प्रेम नाम की मनोवृत्ति का जैसा विस्तृत और पूर्ण परिज्ञान सूर को था, वैसा किसी कवि को नहीं। इनका सारा संयोग वर्णन लंबी चौड़ी प्रेमचर्या, जिसमें आनंदोल्लास के न जाने कितने स्वरूपों का विधान है, रास लीला, दान लीला, मान लीला इत्यादि सब उसी के अंतर्भूत हैं। पीछे देव कवि ने एक अष्टयाम रचकर प्रेमचर्या दिखाने का प्रयत्न किया, पर वह अधिकतर एक घर के भीतर के भोग विलास की कृत्रिम दिनचर्या के रूप में है। उसमें न तो वह अनेक रूपता है और न प्राकृतिक जीवन की वह उमंग। आलंबन की रूप प्रतिज्ञा के लिए कृष्ण के अंग प्रत्यंग का सूर ने जो सैकड़ों पदों में वर्णन किया है, वह तो किया ही है। आश्रय पक्ष में नेत्र व्यापार और उसके अद्भुत प्रभाव पर एक दूसरे ही पद्धति पर बड़ी ही रम्य उक्तियां बहुत अधिक हैं। रूप को हृदय तक पहुंचाने वाले नेत्र ही हैं। इससे हृदय की सारी आकुलता, अभिलाषा और उत्कंठा का दोष इन्हीं रूप वाहकों के सिर मढ़कर सूर ने इनके प्रभाव दर्शन के लिए बड़े अनूठे ढंग निकाले हैं। कहीं इनकी न बुझने वाली प्यास की परेशानी दिखाई है, कहीं इनकी चपलता और निरंकुशता पर उन्हें कोसा है। पीछे बिहारी, राम सहाय, गुलाम नबी और रस निधि ने भी इस पद्धति का बहुत कुछ अनुकरण किया, पर यहाँ तो भंडार भरा हुआ है। इस प्रकार के नेत्र व्यापार वर्णन आश्रय पक्ष और आलंबन पक्ष दोनों में होते हैं। सूर ने आश्रय पक्ष में ही इस प्रकार के वर्णन किए हैं, जैसे मेरे नैना विरह की बेली बई, सींचत नीर नैन के सजनी मूल पताल गई, बिगसती लता सुभाय आपने छाया सघन भई, अब कैसे निरुवारों सजनी सब तन पसरी छई। आलंबन पक्ष में सूर के नेत्र वर्णन उपमा उत्प्रेक्षा आदि से भरी रूप चित्रण की शैली पर ही हैं, जैसे देखी री हरि के चंचल नैन, खंजन मीन मृगज चपलाई नहीं पटतर एक सैन, राजीव दल इंदीवर शतदल कमल कुशेशर जाति, निसी मुद्रित प्रात ही वै बिगसत ये बिगसत दिन रात, अरुण असित असित झलक पलक प्रतीको वरने उपमाए, मनो सरस्वती गंग जमुन मिली आगम कीन्हो आए। आलंबन में स्थित नेत्र क्या क्या करते हैं, इसका वर्णन सूर ने बहुत ही कम किया है। पिछले कुछ कवियों ने इस पक्ष में भी चमत्कार पूर्ण उक्तियां कही हैं, जैसे सूर ने तो अरुण असित असित झलक पर गंगा यमुना और सरस्वती की उत्प्रेक्षा की है, पर गुलाम नबी ने उसी झलक की यह करतूत दिखाई है। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत इक बार। मुरली पर कही हुई उक्तियां भी ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि उनसे प्रेम की सजीवता टपकती है। यह वह सजीवता है जो भरे हुए हृदय से छलक कर निर्जीव वस्तुओं पर भी अपना रंग चढ़ाती है। गोपियों की छेड़छाड़ कृष्ण ही तक नहीं रहती, उनकी मुरली तक भी जो जड़ और निर्जीव है पहुंचती है। उन्हें वह मुरली कृष्ण के संबंध से कभी इठलाती, कभी चिढ़ाती और कभी प्रेम गर्व दिखाती जान पड़ती है। उसी संबंध भावना से ये उसे फटकारती हैं, कभी उनका भाग्य सराहती हैं और कभी उससे ईर्ष्या प्रकट करती हैं। क माई री मुरली अति गर्व काहू बदती नहीं आज, हरि के मुख कमल देखू पायो सुखराज। ख मुरली तव गोपाल ही भावती सुनरी सखी यद्यपि नन नंदही नाना भाति नचावही, राखती एक पाए ठाड़े करी अति अधिकार जनावती, आपन पौणे अधर सज्जा पर कर पल्लव सो पद पलुटावती, भ्रिकुटी कुटिल कोप नासा पुट हम पर कोपी कपावती। हृदय के पारखी सूर ने संबंध भावना की शक्ति का अच्छा प्रसार दिखाया है। कृष्ण के प्रेम ने गोपियों में इतनी सजीवता भर दी है कि कृष्ण की मुरली तक से छेड़छाड़ करने को उनका जी चाहता है। हवा से लड़ने वाली स्त्रियां देखी नहीं तो कम से कम सुनी बहुतों ने होंगी, चाहे उनके जिंदा दिल की कद्र न की हो। मुरली के संबंध में कहे हुए गोपियों के वजन से दो मानसिक तथ्य उपलब्ध होते हैं, आलंबन के साथ किसी वस्तु की संबंध भावना का प्रभाव तथा अत्यंत अधिक या फालतू उमंग के स्वरूप। मुरली संबंधी ने उक्तियों में प्रधानता की पहली बात की है, यद्यपि दूसरे तत्व का भी मिश्रण है। फालतू उमंग के बहुत अच्छे उदाहरण उस समय देखने में आते हैं जब कोई स्त्री अपने प्रिय को कुछ दूर पर देखकर कभी ठोकर खाने पर कंकड़ पत्थर को दो चार मीठी गालियां सुनाती हैं, कभी रास्ते में पड़ी हुई पेड़ की टहनी पर भू भ्रंग सहित झुंझलाती हैं, और कभी अपने किसी साथी को यूं ही ढकेल देती हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता तो कदाचित न हो कि रूप पर मोहित होना, दर्शन के लिए आकुल रहना, वियोग में तड़पना आदि गोपियों के पक्ष में जितना कहा गया है उतना कृष्ण पक्ष में नहीं। यह यहाँ के श्रृंगारी कवियों की, विशेषतः फुटकर पद रचने वालों की सामान्य प्रवृत्ति ही रही है। तुल्यानुराग होने पर भी स्त्रियों की प्रेम दशा या काम दशा का वर्णन करने में ही यहाँ के कवियों का मन अधिक लगा है। पुराने प्रबंध काव्यों में तो यह भेद उतना लक्षित नहीं होता, पर पीछे के काव्यों में यह स्पष्ट झलकता है। वाल्मीकि जी ने रामायण में सीता हरण के उपरांत राम और सीता दोनों के वियोग दुख वर्णन में प्रायः समान ही शब्द व्यय किया है। कालिदास ने मेघदूत का आरंभ यक्ष की विरहावस्था से करके उत्तर मेघ में यक्षिणी के विरह का वर्णन किया है। उनके नाटकों में भी प्रायः यही बात पाई जाती है। अतः मेरी समझ में श्रृंगार में नायिका की प्रेम दशा या विरह दशा का प्राधान्य श्रीमद् भागवत और ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण लीला के अधिकाधिक प्रचार के साथ हुआ, जिसमें एक ओर तो अनंत सौंदर्य की स्थापना की गई और दूसरी ओर स्वाभाविक प्रेम का उदय दिखाया गया। पुरुष आलंबन हुआ और स्त्री आश्रय। जनता के बीच प्रेम के इस स्वरूप ने यहाँ तक प्रचार पाया कि नगरों में क्या ग्रामों में सर्वत्र प्रेम के गीतों के नायक कृष्ण हुए और नायिका राधा। बनवारी या कन्हैया नायक का एक सामान्य नाम सा हो गया। दिल्ली के पिछले बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले तक को होली के दिनों में कन्हैया बनने का शौक हुआ करता था। और देशों की फुटकर श्रृंगारी कविताओं में प्रेमियों के ही विरह आदि के वर्णन की प्रधानता देखी जाती है। जैसे एशिया के अरब, फारस आदि देशों में, वैसे ही यूरोप के इटली आदि काव्य संगीत प्रिय देशों में भी यह पद्धति प्रचलित रही। इटली में पोर्ट्राक की श्रृंगारी कविता एक प्रेमिका के उद्गार हैं। भारत में कृष्ण कथा के प्रभाव से नायक के आकर्षक रूप में प्रतिष्ठित होने से पुरुषों की प्राधान्य वासना अधिक तृप्त हुई। आगे चलकर पुरुषत्व पर इसका कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा। बहुतेरे शौर्य, पराक्रम आदि पुरुषोचित गुणों से मुंह तोड़ चटक मटक लटक लाने में लगे। बहु जगतों पौंग पट्टी सुर में मिस्सी तक की नौबत पहुंची। यूरोप में जहां स्त्री प्रधान आकर्षण के रूप में प्रतिष्ठित हुई, उसका उल्टा हुआ। वहां स्त्रियों के बनाव सिंगार और पहनावे के खर्च के मारे पुरुषों के नाको दम हो गया। सूर के संयोग वर्णन की बात हो चुकी, इनका विप्रलंब ऐसा ही विस्तृत और व्यापक है। वियोग की जितनी अंतर दशाएं हो सकती हैं, जितने ढंगों से उन दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ और सामान्यतया हो सकता है, ये सब उसके भीतर मौजूद हैं। आरंभ वात्सल्य रस के वियोग पक्ष से हुआ है। कृष्ण के मथुरा से न लौटने पर नंद और यशोदा दुख सागर में मग्न हो गए हैं। अनेक दुखात्मक भाव तरंगे उनके हृदय में उठती हैं। कभी यशोदा नंद से खींच कर कहती है, छाड़ी स्नेह चले मथुरा, कत दौरी न चीर गयो, फाटी न गई ब्रज की छाती, कत यह सूल सयो। इस पर नंद यशोदा पर उलट पड़ते हैं। तब तू मारी बोई करती, रिसनी आगे कहे जो आवत, अबले भांडे भरती, रीस के कर दावरी, ले फिरती घर घर सुरती, कठिन ही करी तब तो बांध्यो, अब वथा करी मरती। यह झुंझलाहट वियोगजन्य है, प्रेम भाव के ही अंतर्गत है और कितनी स्वाभाविक है। सुख शांति के भंग का कैसा यथा तथ्य चित्र है, आगे देखिए। गहरी उत्सुकता और अधीरता के बीच विरक्ति और तिरस्कार मिश्रित खिजलाहट का यह मेल कैसा अनूठा उतरा है। यशोदा नंद से कहती है, नंद ब्रज लीजे ठो की बजाय, देहु विदा मिली जाहि मधुपुरी, जहाँ गोकुल के राय। ठो की बजाय में कितनी व्यंजना है, तुम अपना ब्रज अच्छी तरह संभालो, तुम्हें इसका गहरा लोभ है तो मैं जाती हूँ। एक एक वाक्य के साथ हृदय लिपटा हुआ आता दिखाई दे रहा है। एक वाक्य दो दो तीन तीन भावों से लदा हुआ है। श्लेष आदि कृत्रिम विधानों से मुक्त ऐसा ही भाव गुरुत्व हृदय को सीधे जाकर स्पर्श करता है। इसे भाव सबलता कहें या भाव पंचामृत, क्योंकि एक ही वाक्य नंद ब्रज लीजे ठो की बजाय में कुछ निर्विवेद, कुछ तिरस्कार और कुछ अमर्श, इन तीनों की मिश्र व्यंजना, जिसे सबलता कहने से संतोष नहीं होता, पाई जाती है। सबलता के प्रदत्त उदाहरण प्रत्येक भाव अलग शब्दों या वाक्यों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, पर उक्त वाक्य में यह बात नहीं है। ग्वाल सखाओं में भी यही दशा हो रही है, पर कभी ये व्याकुल और अधीर होते हैं, कभी कृष्ण की निष्ठुरता पर शुद्ध होकर कहते हैं, भय हरि मधुपुरी राजा, बड़े बंस कहाए, सूत मागध बदत बिरुदही, बरनी बसुद्यो तात। राजभूषण अंग भ्राजत अहिर कहत लजात। वियुक्त प्रिय के सुख के अनिश्चय की शंका तक न पहुंचती हुई भावना दीनता और शोभजन्य उदासीनता किस प्रकार इन वचनों में टपक रही है। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की कृपा करती ही रहियो। तुम तो टेब जानित ही है हो, तव मोही कही आवे। प्रात उठत मेरे लाल लड़त ही माखन रोटी भावे। कृष्ण राजभवन में जा पहुंचते हैं, यह जानते हुए भी यशोदा के प्रेम पूर्ण हृदय में यह बात जल्दी नहीं बैठती कि कृष्ण के सुख का जितना ये रखती थी ध्यान, उतना संसार में और कोई भी रख सकता है। केवल उदाहरण की लीक पीटने वालों के भाग्य में यह बात कहाँ। आगे चलकर गोपियों की वियोग दशा का जो धारा प्रवाह वर्णन है उसका तो कहना ही क्या है। न जाने कितनी मानसिक दशाओं का संचार उसके भीतर है, कौन गिना सकता है। संयोग और वियोग दो अंग होने से श्रृंगार की व्यापकता बहुत अधिक है, इसी से वह रसराज कहलाता है। इस दृष्टि से यदि सूरदास को हम रस सागर कहें तो बेखटके कह सकते हैं। कृष्ण के चले जाने पर सायं प्रभात तो उसी प्रकार होते हैं, पर मदन गोपाल बिना या तन की सबे बात बदली। ब्रज में पहले सायंकाल में जो मनोहर दृश्य देखने में आया करता था वह अब बाहर नहीं दिखाई पड़ता, पर मन से उसकी स्मृति नहीं जाती। यही बेरियां बनते ब्रज आवते, दूर ही ते वह बेनु अधर धरी बारंबार बजावते। संयोग के दिनों में आनंद की तरंगे उठाने वाले पदार्थों को वियोग के दिनों में देखकर जो दुख होता है उसकी व्यंजना के लिए कवियों में उपालंब की चाल बहुत दिनों से चली आती है। चंद्रोपालंब संबंधिनी बड़ी सुंदर कविताएं संस्कृत साहित्य में हैं। देखिए, सागर मंथन के समय चंद्रमा को निकालने वालों तक इस उपालंब में किस प्रकार गोपियां अपनी दृष्टि दौड़ाती हैं। पिया बिनु होत कहा अब सुनो, लेकिन प्रकट कियो प्राची दिसी बिरहिनी को दुख दूनो। सब निर्दय सुर असुर सैल सखी सायर सर्प समेत, धन्य कहो वर्षा ऋतु तमचुर और कमलन को हेत। जुग जुग जीवे जरा बापुरी मिले राहु अरुकेत। इसी पद्धति के अनुसार ये वियोगिनी गोपियां अपने उजड़े हुए नीरस जीवन के मेल में न होने के कारण वृंदावन के हरे भरे पेड़ों को कोसती हैं। मधुवन तुमकत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। तुम हो नीलज लाज नहीं तुमको, फिर सिर पुहुप धरे। ससा स्यार ओ वन के पखेरु धिक धिक सबन करे। कौन काज ठाड़े रहे वन में काहे न उकटी परे। इसी प्रकार रात उन्हें सापिन सी लग रही है। सापिन की पीठ काली और पेट सफेद होता है, ऐसा प्रसिद्ध है कि वह काट कर उलट जाती है जिससे सफेद भाग ऊपर हो जाता है। बरसात की अंधेरी रात में कभी कभी बादलों के हट जाने से जो चांदनी फैल जाती है वह ऐसी ही लगती है। पिया बिनु सापिन कारी राती, कबहु जामिनी होती जुनैया डसी उलटी वह जाती। इस पद पर न जाने कितने लोग लट्टू हैं। सूरदास जी का विहार स्थल जिस प्रकार की चारदीवारी के भीतर एक ही न रहकर यमुना के हरे भरे कछारों, करील के कुंजों और वनस्थलियों तक फैला है, उसी प्रकार का उनका विरह वर्णन भी बैरिन भई रतिया और सापिन भई सेजिया तक ही न रहकर प्रकृति के खुले क्षेत्र के बीच दूर दूर तक पहुंचता है। मनुष्य के आदिम वन्य जीवन के परंपरागत मधुर संस्कार को उद्दीप्त करने वाले इन शब्दों में कितना माधुर्य है। एक बन ढूंढी सकल बन ढूंढो, कतहु न श्याम लहो। ऋतुओं का आना जाना उसी प्रकार लगा है, प्रकृति पर उनका रंग वैसा ही चढ़ता उतरता दिखाई पड़ता है। भिन्न भिन्न ऋतुओं की वस्तुएं देख जैसे गोपियों के हृदय में मिलने की उत्कंठा उत्पन्न होती है, वैसे ही कृष्ण के हृदय में क्यों नहीं उत्पन्न होती। जान पड़ता है ये सब उधर जाती ही नहीं जिधर कृष्ण बसते हैं, सब वृंदावन में ही आ आकर अपना अड्डा जमाती हैं। मानो माई सबन इतहि भावत, अब वही देश नंद नंदन को कौ न समो जनावत। धरत न बन नव पत्र फूल फल, पिक बसंत नहीं गावत। मुदित न सर सरोज अली गुंजत, पवन पराग उड़ावत। पावस विविध बरन बर बारद, उठी नहीं अंबर छावत। चातक मोर चकोर सोर करे, दामिनी रूप दुरावत। अपनी अंतर दशा को ऋतु सुलभ व्यापारों के बीच बिंब प्रतिबिंब रूप से देखना भावमग्न अंतःकरण की एक विशेषता है। इसके वर्णन में प्रस्तुत अप्रस्तुत का भेद मिट सा जाता है। ऐसे वर्णन पावस के प्रसंग में सूर ने बहुत अच्छे किए हैं। निसि दिन बरसत नैन हमारे बहुत प्रसिद्ध पद है। विरहोन्माद में भिन्न भिन्न प्रकार की उठती हुई भावनाओं से रंजित होकर एक ही वस्तु कभी किसी रूप में दिखाई पड़ती है, कभी किसी रूप में। उठते हुए बादल कभी तो ऐसे भीषण रूप में दिखाई पड़ते हैं, देखिए तो चहु दिसी ते घन घोरे, मानो मत मदन के हथियन बल करी बंधन तोरे, कारे तन अति चुवत गंड मद बरसत थोरे थोरे, रुकत न पवन महावत हुपे मुरत न अंकुश मोरे। कभी अपने प्रकृत लोक सुखदायक रूप में ही सामने आते हैं और कृष्ण की अपेक्षा कहीं दयालु और परोपकारी लगते हैं। बरु ये बदराउ बरसन आए, अपनी अवधि जानी नंद नंदन, गरजी गगन घन छाए, कहियत है सुरलोक बसत सखी सेवक सदा पराए, चातक कुल की पीर जानी कै तेउ कहाँ ते धाये, तृण किए हरित हर्ष बेली मिली दादुर मृतक जीवाए। बदराव के ऊ और बरु में कैसी व्यंजना है, बादल तक जो जड़ समझे जाते हैं आश्रितों के दुख से द्रवीभूत होकर आते हैं। प्रिय के साथ रूप साम्य के कारण यही मेघ कभी प्रिय लगने लगते हैं। आज घनश्याम की अनुहारी, उन्हें जाए सावर ते सजनी देखी रूप की आरी, इंद्र धनुष मनो नवल बसन छवि दामिनी दसन बिचारी, जनु बग पाती माल मोतिन की चितवत हित ही निहारी। इसी प्रकार पपीहा कभी तो अपनी बोली के द्वारा प्रिय का स्मरण कराकर दुख बढ़ाता हुआ प्रतीत होता है और यह फटकार सुनता है। हो तो मोहन के विरही जरी रे तू कत जारत, रे पापी तू पंखी पपीहा पियु 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 अधिराति पुकारत, सब जग सुखी दुखी तू जल बिनु तव न तन की बिथही विचारत, सूर श्याम बिनु ब्रज पर बोलत हटी अगिलो जन्म बिगारत। और कभी सम दुख भोगी के रूप में अत्यंत सुहृद जान पड़ता है और समान प्रेम व्रत पालन के द्वारा उनका उत्साह बढ़ाता प्रतीत होता है। बहुत दिन जीवो पपीहा प्यारो, बासर नैन नाव लय बोलत भयो बिरह जुरकारो, आप दुखित पर दुखित जान जिय चातक नाम तिहारो, देखो सकल बिचारी सखी जिय बिछुरन को दुख न्यारो, जाहि लगे सोई पै जाने प्रेम बान अनियारो, सूरदास प्रभु स्वाति बूंद लगी तज्जो सिंधु करी खारो। काव्य जगत की रचना करने वाली कल्पना इसी को कहते हैं। किसी भावोद्रेक द्वारा परिचालित अंतर्वृत्ति जब उस भाव के पोषक स्वरूप गढ़ कर या काट छाट कर सामने रखने लगती है तब हम उसे सच्ची कवि कल्पना कह सकते हैं। यों ही सिर पच्ची करने बिना किसी भाग में नग्न हुए कुछ अनोखे रूप खड़े करना या कुछ को कुछ कहने लगना या तो बावलापन है या दिमागी कसरत, सच्चे कवि की कल्पना नहीं। वास्तव के अतिरिक्त या वास्तव के स्थान पर जो रूप सामने लाए गए हों उनके संबंध में यह देखना चाहिए कि ये किसी भाव की उमंग में उस भाव को संभालने वाले या बढ़ाने वाले होकर या खड़े हुए हैं या यो ही तमाशा दिखाने के लिए कुतूहल उत्पन्न करने के लिए जबरदस्ती पकड़कर लाए गए हैं। यदि ऐसे रूपों की तह में उनके प्रवर्तक या प्रेषक भाव का पता लग जाए तो समझिए कि कवि के हृदय का पता लग गया और ये रूप हृदय प्रेरित हुए। अंग्रेज कवि कॉलरिज ने, जिसने कवि कल्पना पर अच्छा विवेचन किया है, अपनी एक कविता में ऐसे रूपावरण को आनंद स्वरूप आत्मा से निकला हुआ कहा है, जिसके प्रभाव से जीवन में रोचकता रहती है। जब तक यह रूपावरण जीवन में साथ लगा रहता है तब तक दुख की परिस्थिति से भी आनंद स्वप्न नहीं टूटता, पर धीरे धीरे यह दिव्य आवरण हट जाता है और मन गिरने लगता है। भावोद्रेक और कल्पना में इतना घनिष्ठ संबंध है कि काव्य मीमांसक ने दोनों को एक ही कहना ठीक समझकर कह दिया है। कल्पना आनंद है, इमेजिनेशन इज जॉय। सच्चे कवियों की कल्पना की बात जाने दीजिए। साधारण व्यवहार में भी लोग जोश में आकर कल्पना का जो व्यवहार बराबर किया करते हैं वह किसी पहाड़ को शिशु और पांडव कहने वाले कवियों के व्यवहार से कहीं उचित होगा। किसी निष्ठुर कर्म करने वाले को यदि कोई हत्यारा कह देता है तो वह सच्ची कल्पना का उपयोग करता है, क्योंकि विरक्ति या घृणा के अतिरेक से प्रेरित होकर ही उसकी अंतर्वृत्ति हत्यारे का रूप सामने करती है, जिससे भाव की मात्रा के अनुरूप आलंबन खड़ा हो जाता है। हत्यारा शब्द का लाक्षणिक प्रयोग ही विरक्ति की अधिकता का व्यंजक है। उनके स्थान पर यदि कोई उसे बकरा कहे तो या तो किसी भाव की व्यंजना न होगी या किसी ऐसे भाव की होगी जो प्रस्तुत विषय के मेल में नहीं। कहलाने वाला कोई भाव अवश्य चाहिए और उस भाव को प्रस्तुत वस्तु के अनुरूप होना चाहिए। भारी मूर्ख को लोग जो गधा कहते हैं वह इसलिए कि मूर्ख कहने से उनका जी नहीं भरता, उनके हृदय में उपहास अथवा तिरस्कार का जो भाव रहता है उसकी व्यंजना नहीं होती। कहने की आवश्यकता नहीं कि अलंकार विधान में उपयुक्त उपमान लाने में ही कल्पना काम करती है। जहाँ वस्तु गुण या क्रिया के पृथक पृथक साम्य पर ही कवि की दृष्टि रहती है वहाँ वह उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आदि का सहारा लेता है, और जहाँ व्यापार समष्टि या पूर्ण प्रसंग का साम्य अपेक्षित होता है वहाँ दृष्टांत अर्थांतरन्यास और अन्योक्ति का। उपर्युक्त विवेचन से यह प्रकट है कि प्रस्तुत के मेल में जो अप्रस्तुत रखा जाए चाहे वह वस्तु गुण या क्रिया का हो अथवा व्यापार समष्टि व प्राकृतिक और चित्ताकर्षक हो तथा उसी भाव का उसी प्रकार का भाव जगाने वाला हो जिस प्रकार का प्रस्तुत। व्यापार समष्टि के समन्वय में कवि की सहृदयता का जिस पूर्णता के साथ हमें दर्शन होता है उस पूर्णता के साथ वस्तु क्रिया आदि के पृथक पृथक समन्वय में नहीं। इसी से सुंदर अन्योक्तियाँ इतनी मर्म स्पर्शनी होती हैं। चुना हुआ अप्रस्तुत व्यापार जितना ही प्राकृतिक होगा जितना ही अधिक मनुष्य जाति के आदिम जीवन में सुलभ दृश्यों के अंतर्गत होगा उतना ही रमणीय और अनुरंजनकारी होगा। सूरदास जी ने कई स्थानों पर अपनी कल्पना के बल से प्रस्तुत प्रसंग के मेल में अत्यंत मनोरम व्यापार समष्टि की योजना की है। कोई गोपिका या राधा स्वप्न में श्री कृष्ण के दर्शन का सुख प्राप्त कर रही थी कि उसकी नींद उचट गई। इस व्यापार के मेल में कैसा प्रकृति व्यापी और गूढ़ व्यापार सूर ने रखा है देखिए। हमको सपने हूँ में सोच जा दिन में बिछुरे नंद नंदन ता दिन में यह पोछ मनो गोपाल आए मेरे घर हंसी करी भुजा गही कहा करो बैरी निभई निदिया निमिष न और रही ज्यों चकई प्रतिबिंब देखी कै आनंदी पिए जानी सूर पवन मिली निठुर विधाता चपन कियो जल जल आनी। स्वप्न में अपने ही मानस में किसी का रूप देखने और जल में अपना ही प्रतिबिंब देखने का कैसा गूढ़ और सुंदर साम्य है। इसके उपरांत पवन द्वारा प्रशांत जल के हिल जाने से छाया का मिट जाना कैसा भूत व्यापी व्यापार स्वप्न भंग के मेल में लाया गया है। इसी प्रकार प्राकृतिक चित्रों द्वारा सूर ने कई जगह पूरे प्रसंग की व्यंजना की है। जैसे गोपियां मथुरा से कुछ ही दूर पर पड़ी विरह से तड़फड़ा रही हैं, पर कृष्ण राज सुख के आनंद में फूले नहीं समा रहे हैं। यह बात ये इस चित्र द्वारा कहते हैं। सागर कूल मीन तरफत है हुलसी होत जलपीन। जैसा ऊपर कहा गया है कि जिसे निर्माण करने वाली सृष्टि खड़ी करने वाली कल्पना कहते हैं उसकी पूर्णता किसी एक प्रस्तुत वस्तु के लिए कोई दूसरी अप्रस्तुत वस्तु जो कि प्रायः कवि परंपरा में प्रसिद्ध हुआ करती है रख देने में उतनी नहीं दिखाई पड़ती जितनी किसी एक पूर्ण प्रसंग के मेल का कोई दूसरा प्रसंग जिसमें अनेक प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों की नवीन योजना रहती है रखने में देखी जाती है। सूरदास जी ने कल्पना की इस पूर्णता का परिचय जगह जगह दिया है। इसका अनुमान ऊपर उद्धृत पदों से ही हो सकता है। कबीर जैसी आदि कुछ रहस्यवादी कवियों ने इस जीवन का मार्मिक स्वरूप तथा परोक्ष जगत की कुछ धुंधली सी झलक दिखाने के लिए इसी अन्योक्ति की पद्धति का अवलंबन किया। जैसे हंसा प्यारे सरोवर तजी कहाँ जाए जही सरोवर बिच मोती चुनते बहुविधि केली कराए सूखे ताल पुरैनी जल छोड़े कमल गए कुंभिलाए कह कबीर जो अब की बिछुरे बहुरी मिले कब आए। रहस्यवादी कवियों के समान सूर की कल्पना भी कभी कभी इस लोक का अतिक्रमण करके आदर्श लोक की ओर संकेत करने लगती है। जैसे चकई री चली चरण सरोवर जहां न प्रेम वियोग निशि दिन राम राय की वर्षा भय रुज नहीं दुख सोग जहां सनक से मीन हंस शिव मुनि जन नख रवि प्रभा प्रकाश प्रफुल्लित कमल निमिष नहीं शशि डर गुंजत निगम सुबास जहि सर सुभग मुक्ति मुक्ता फल सुकृत अमृत रस पीजय सोसर छाड़िक बुद्धि विहंगम यहाँ कहाँ रही कीजय। पर एक व्यक्तवादी सगुणोपासक कवि की उक्ति होने के कारण इस चित्र में वह रहस्यमय अव्यक्तता या धुंधलापन नहीं है। कवि अपनी भावना को अस्पष्ट और अधिक व्यक्त करने के लिए जगह जगह आकुल दिखाई पड़ता है। इसी से अन्योक्ति का मार्ग छोड़ जगह जगह उसने रूपक का आश्रय लिया है। इसी अन्योक्ति का दीन दयाल जी गिरी ने अच्छा निर्वाह किया है। चल चकई वासर विषय जह नहीं रहन बिछोह रहत एक रस दिवस ही सुहृद हंस संदोह। सुहृद हंस संदोह कोह अरु द्रोह न जाके भोगत सुख अम्बोह मोह दुख होय न ताके। बरनय दीन दयाल भाग्य बिनु जाय न सकई प्रिय मिलाप नित रहे ताहि सर चल तू चकई। इसी अन्योक्ति पद्धति को कविन्द्र रविन्द्र ने आजकल अपने विस्तृत निरीक्षण के बल से और अधिक पल्लवित करके जो पूर्ण और भव्य स्वरूप प्रदान किया है वह हमारे नवीन हिंदी साहित्य क्षेत्र में गांव में नया नया आया ऊंट हो रहा है। बहुत से नवयुवकों को अपना एक नया ऊंट छोड़ने का हौसला हो गया है। जैसे भावों या तथ्यों की व्यंजना के लिए श्रीयुत रविंद्र प्रकृति के क्रीड़ा स्थल से लेकर नाना मूर्त स्वरूप खड़ा करते हैं, वैसे भावों को ग्रहण करने तक की क्षमता न रखने वाले बहुतेरे ऊंट पटांग चित्र खड़ा करने और कुछ असंबद्ध प्रलाप करने के ही छायावाद की कविता समझ अपनी भी कुछ करामात दिखाने के फेर में पड़ गए हैं। चित्रों के द्वारा बात कहना बहुत ठीक है, पर कहने के लिए कोई बात भी तो हो। कुछ तो काव्य रीति से सर्वथा अनभिज्ञ छंद अलंकार आदि के ज्ञान से बिल्कुल कोरे देखे जाते हैं। बड़ी भारी बुराई यह है कि अपने को एक नए संप्रदाय में समझ अहंकार वश ये कुछ सीखने का कभी नाम भी नहीं लेना चाहते और अपनी अनभिज्ञता को एक चलते नाम की ओट में छिपाना चाहते हैं। मैंने कई एक से उन्हीं की रचना लेकर कुछ प्रश्न किए, पर उनका मानसिक विकास बहुत साधारण कोटि का कोई गंभीर तत्व ग्रहण करने के अनुपयुक्त पाया। ऐसों के द्वारा काव्य क्षेत्र में भी राजनैतिक क्षेत्र के समान पाखंड के प्रचार की आशंका है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि रहस्यवाद का प्रकृत स्वरूप और उसका इतिहास आदि साहित्य सेवियों के सामने रखा जाए तथा पुराने और नए रहस्यवादी कवियों की रचनाओं की सूक्ष्म परीक्षा द्वारा रहस्यवाद की कविता की साहित्यिक स्वरूप की मीमांसा की जाए। यहाँ तक तो सूर की सहृदयता की बात हुई, अब उनकी साहित्यिक निपुणता के संबंध में भी दो चार बातें कहना आवश्यक है। किसी कवि की रचना के विचार के सुबीते के लिए हम दो पक्ष कर सकते हैं, हृदय पक्ष और कला पक्ष। हृदय पक्ष का कुछ दिग्दर्शन हो चुका, अब सूर की कला निपुणता के काव्य के बाह्यांग के संबंध में यह समझ रखना चाहिए कि वह भी उनमें पूर्ण रूप से वर्तमान है। यद्यपि काव्य में हृदय पक्ष ही प्रधान है, पर बहिरंग भी कम आवश्यक नहीं है। रीति अलंकार छंद ये सब बहिरंग विधान के अंतर्गत हैं, जिनके द्वारा काव्यात्मा की अभिव्यक्ति में सहायता पहुंचती है। सूर तुलसी बिहारी आदि कवियों में दोनों पक्ष प्रायः सम हैं। जैसी में हृदय पक्ष की प्रधानता है, कला पक्ष में अलंकारों का बहुत कुछ व्यवहार होते हुए भी त्रुटि और न्यूनता है। केशव में कला पक्ष ही प्रधान है, हृदय पक्ष न्यून है। यह तो आरंभ में ही कहा जा चुका है कि सूर की रचना जयदेव और विद्यापति के गीति काव्यों की शैली पर है, जिनमें सुर और लय के सौंदर्य और माधुर्य का भी रस परिपाक में बहुत कुछ योग रहता है। सूर सागर में कोई राग व रागिनी छूटी न होगी, इससे वह संगीत प्रेमियों के लिए भी बड़ा भारी खजाना है। नाद सौंदर्य के साधनों में अनुप्रास आदि शब्द अलंकार भी हैं। संस्कृत के गीत गोविंद में कोमलकांत पदावली और अनुप्रास की ओर बहुत कुछ ध्यान है। विद्यापति की रचना में कोमल पदावली का आग्रह तो है, पर अनुप्रास का उतना नहीं। सूर में चलती भाषा की कोमलता है, वृत्ति विधान और अनुप्रास की ओर झुकाव कम है, इससे भाषा की स्वाभाविकता में बाधा नहीं पड़ने पाई है। भावुक सूर ने अपना शब्द शोधन दूसरी ओर दिखाया है, उन्होंने चलते हुए वाक्यों मुहावरों और कहीं कहीं कहावतों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर की भाषा बहुत चलती और स्वाभाविक है। काव्य भाषा होने से यद्यपि उसमें कहीं कहीं संस्कृत के पद कवि के समय से पूर्व के परंपरागत प्रयोग तथा ब्रज से दूर दूर के प्रदेशों के शब्द भी आ मिले हैं, पर उनकी मात्रा इतनी नहीं है कि भाषा के स्वरूप में कुछ अंतर पड़े या कृत्रिमता आवे। श्लेष और यमक कूट पदों में ही अधिकतर पाए जाते हैं, अर्थालंकारों की अलबत्ता पूर्ण प्रचुरता है, विशेषतः उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आदि सादृश्य मूलक अलंकारों की। यद्यपि उपमान अधिकतर साहित्य प्रसिद्ध और परंपरागत ही हैं, पर स्वकल्पित नए नए उपमानों की भी कमी नहीं है। कहीं कहीं तो जो प्रसिद्ध उपमान भी लिए गए हैं वे प्रसंग के बीच बड़ी ही अनूठी उद्भावना के साथ बैठाए गए हैं। स्फटिक की आंगन में बालक कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं और उनके हाथ पैर का प्रतिबिंब पड़ता चलता है, इस पर कवि की उत्प्रेक्षा देखिए। फटिक भूमि पर कर पग छाया यह शोभा अति राजती, करी करी प्रतिपद प्रति मनो वसुधा कमल बैठ की साजती। रूप या अंगों की शोभा के वर्णन में उपमा की भरमार बराबर मिलेगी। इनमें बहुत सी तो पुरानी और बंधी हुई हैं और कुछ नवीन भी हैं। उपमा और उत्प्रेक्षा की सबसे अधिकता हरिजू की बाल छवि के वर्णन में पाई जाती है। यो जो जहाँ तहाँ रूप वर्णन है, सर्वत्र ये अलंकार भरे पड़े हैं। उपमान सब तरह के हैं, पृथ्वी पर के भी और पृथ्वी के भी सामान्य प्राकृतिक व्यापार भी और पौराणिक प्रसंग भी। पिछले प्रकार के उपमानों के उदाहरण इस प्रकार हैं। क, नील श्वेत पर पीत लाल, मणि लटकत माल रुराई, सुनि गुरु असुर देव गुरु मिली मनो, भौम सहित समुदायी। ख, हरिकर राजत माखन रोटी, मनो बराह भूदर सह पृथ्वी, धरि दशनन की कोटी। अंग शोभा और वेशभूषा आदि के वर्णन में सूर को उपमा देने की झक सी चढ़ जाती है और ये उपमा पर उपमा, उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा कहते जाते हैं। इन झक में कभी कभी परिमिति या मर्यादा का विचार सेंस ऑफ प्रोपोर्शन नहीं रह जाता, जैसे ऊपर के उदाहरण ख में कहाँ मक्खन लगी हुई छोटी सी रोटी और कहाँ गोल पृथ्वी। हाँ, जहाँ ईश्वरत्व या देवत्व की भावना से किसी छोटे व्यापार या अत्यंत वृहद व्यापार की ओर संकेत मात्र किया है, वहाँ ऐसी बात नहीं खटकती। जैसे इस पद में, मथत दधि मथनी टेकी रयो, आरी करत मटकी गही मोहन, बासु की शंभु डरयो, मंदर डरत सिंधु पुनि कापत, फिर जनी मथन करे, प्रलय होए जनी कहे मथानी, प्रभु मर्याद टरे। पर उक्त दोनों उदाहरणों के संबंध में तो इतना बिना कहे नहीं रहा जाता कि ऐसे उपमान बहुत काव्योपयोगी नहीं जचते। काव्य में ऐसे ही उपमान बहुत अच्छी सहायता पहुंचाते हैं जो सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप में परिचित होते हैं और जिनकी भव्यता, विशालता या रमणीयता आदि का संस्कार जनसाधारण के हृदय पर पहले से जमा चला आता है। न शनि का कोयले सा कालापन ही किसी ने आंखों देखा है, न वराह भगवान का दांत की नोक पर पृथ्वी उठाना। यह बात दूसरी है कि केशव ऐसे कुछ प्रसिद्ध कवियों ने भी भानु मनो शशि अंक लिए ऐसे उत्प्रेक्षा की ओर रुचि दिखाई है। हमारे कहने का यह तात्पर्य नहीं कि ज्ञान विज्ञान के प्रसार से जो सूक्ष्म और वृहद क्षेत्र मनुष्य के लिए खुलते जाते हैं, उनके भीतर नाना रमणीय और अद्भुत रूपों और व्यापारों का जो सर्वसाधारण को प्रत्यक्ष नहीं है, काव्य में उपयोग करके उसके क्षेत्र का विस्तार न किया जाए। उनका प्रयोग किया गया, कवि की प्रतिभा द्वारा ये गोचर रूप में सामने लाए जाएं, पर दूसरे प्रकार की रचनाओं में लाए जाएं। केवल अंग आभूषण आदि की उपमा के लिए नहीं, ज्योतिर्विज्ञान द्वारा खगोल के बीच न जाने कितने चक्कर खाते, बनते बिगड़ते रंग बिरंग के पिंडों, अपार ज्योति समूहों आदि का पता लगा है, जिनके सामने पृथ्वी किसी गिनती में नहीं। कोई विश्वव्यापी ज्ञान दृष्टि वाला कवि यदि विश्व की कोई गंभीर समस्या लेकर उसे काव्य रूप में रखना चाहता है तो वह इन सबको हस्तामलक बनाकर सामने ला सकता है। सूरदास जी में जितनी सहृदयता और भावुकता है, प्रायः उतनी ही चतुरता और वाक् विदग्धता भी है। किसी बात को कहने के न जाने कितने टेढ़े सीधे ढंग उन्हें मालूम थे। गोपियों के वचन में कितनी विदग्धता और वक्रता भरी है। वचन रचना की उस वक्रता के संबंध में आगे विचार किया जाएगा। यहाँ पर हम वैदग्ध के उस उपयोग का उल्लेख करना चाहते हैं जो आलंकारिक कुतूहल उत्पन्न करने के लिए किया गया है। साहित्य प्रसिद्ध उपमानों को लेकर सूर ने बड़ी क्रीड़ाएं की हैं। कहीं उनको लेकर रूपकातिशयोक्ति द्वारा अद्भुत एक अनुपम बाग लगाया है, कहीं जब जैसा जी चाहा उन्हें संगत सिद्ध करके दिखा दिया है, कहीं असंगत। गोपियां वियोग में कुड़कर एक स्थान पर कृष्ण के अंगों के उपमानों को लेकर उपमा को इस प्रकार न्याय संगत ठहराती हैं। ऊधो अब यह समुझी भई, नंद नंदन के अंग अंग प्रति उपमा न्याय दई, कुंतल कुटिल भवर भरी भावरी, मालती भुरै लई, तजत न गहरु कियो कपटी, जब जानी निरस गई, आनन इंदु बरन सम्मुख तजी, करखे तेन नई, निर्मोही नहीं नेह कुमुदिनी अंत ही हेम हई, तन घन श्याम सेई निसी बासर, रटी रसना छिजई, सूर विवेकहीन चातक मुख बूंदो तो न सही। इसी प्रकार दूसरे स्थान पर अपने नेत्रों के उपमानों को अनुपयुक्त ठहराती हैं। उपमा एक न नैन गही, कविजन कहत कहत चली आए, सुधी करी करी काहु न कही, कहे चकोर मुख बिधु बिनु जीवन, भवर न तह उड़ जात, हरिमुख कमल कोस बिछुरे ते ठाले क्यों ठहरात, खंजन मन रंजन जन जोपे, कबहु ना ही सतरात, पंख पसारी न उड़त मंद वह समर समीप विकात आए बधन ब्याद वह उधो जो मृग क्यों न पलाए देखत भागी बसे घन वन में जहाँ कहु संग न धाये ब्रजलोचन बिनु लोचन कैसे प्रतिछिन अति दुख बाढ़त सूरदास मीनत कछु इक जल भरी संग न छाड़त। दोनों उदाहरणों में उपमानों की उपयुक्तता और अनुपयुक्तता का जो आरोप किया गया है वह हृदय के शोभ से उत्पन्न है, इसी में उसमें समरसता है, काव्य की योग्यता है। यदि कोई कटहुज्जति इन्हीं उपमानों को लेकर लगे वाह नेत्र भ्रमर कैसे हो सकते हैं, भ्रमर होते तो उड़ न जाते, मृग कैसे हो सकते हैं, मृग होते तो जमीन पर चौकड़ी न भरते, तो उसके कथन में कुछ भी काव्यत्व न होगा। उपमानों की अनंत दशा का वर्णन करके इसी प्रकार सूर ने अप्रस्तुत प्रशंसा द्वारा राधा के अंगों और चेष्टाओं का विरह से द्युतिहीन और मंद होना व्यंजित किया है। तबते इन सबहिन सचु पायो जबते हरि संदेश तिहारो सुनत सांवरो आयो फूले ब्याल दूर ते प्रगटे पवन पेट भरी खायो ऊंचे बैठी बिहंग सभा बिच कोकिल मंगल गायो निकसी कंदरा ते के हरिहु माथे पूछ हिलायो बन गृह ते गजरात निकसी के अंग अंग गर्व जनायो। चेष्टाओं और अंगों का मंद और श्रीहीन होना कारण है और उपमाओं का आनंदित होना कार्य है। यहाँ अप्रस्तुत कार्य के वर्णन द्वारा प्रस्तुत कारण की व्यंजना की गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जानकी के न रहने पर उपमानों का प्रसन्न होना राम के मुख से कहलाया है। कुंद कली दाड़िम दामिनी कमल सरद शशि अहि भामिनी श्रीफल कनक कदली हरवाही नेकुन संक सकुच मन माही सुन जानकी तो ही बिनु आजू हर्ष सकल पाई जनु राजू। पर यहाँ उपमानों के आनंद से केवल सीता के न रहने की व्यंजना होती है। सूर की अप्रस्तुत प्रशंसा में उक्ति का चमत्कार भी कुछ विशेष है और रसात्मकता भी। दूर की सूझ या ऊहा वाले चमत्कार प्रधान पद भी सूर ने बहुत कहे हैं, जैसे क दूर करहु बिना कर धरिबो मोह मृग नाही रथ हाक्यो नाहित होत चंद को ढरिबो ख मन राखन को बेनु लियो कर मृग थाके उड़पति न चरे अति आतुर वह सिंह लिख्यो कर जेहि भामिनी का करुण टरे। राधा मन बहलाने के लिए किसी प्रकार रात बिताने के लिए वीणा लेकर बैठी, उस वीणा या वेणु के स्वर से मोहित होकर चंद्रमा के रथ का हिरण अड़ गया और चंद्रमा के रुक जाने से रात और भी बढ़ गई। इस पर घबरा कर वे सिंह का चित्र बनाने लगी जिससे मृग डर कर भाग जाए। जायसी के पद्मावत में भी यह उक्ति ज्यों की त्यों आई है। गहे बीन मकुरैनी बिहाई शशि बाहन तह रहे ओनाई पुनि धनि सिंह उरै है लागे ऐसे ही बिथा रहनी सब आगे। जायसी की पद्मावत विक्रम संवत 1597 में बनी और सूरसागर संवत 1607 के लगभग बन चुका था, अतः जायसी की रचना कुछ पूर्व ही मानी जाएगी। पूर्व की न सही तो भी किसी एक ने दूसरे से यह उक्ति ली हो इसकी संभावना नहीं। उक्ति सूर और जायसी दोनों से पुरानी है, दोनों ने स्वतंत्र रूप से इसे कवि परंपरा द्वारा प्राप्त किया। कहीं कहीं सूर ने कल्पना को अधिक बढ़ाकर या यूं कहिए कि ऊहा का सहारा लेकर जैसा पीछे बिहारी ने बहुत किया वर्णन कुछ अस्वाभाविक कर दिया। चंद्र की दाहकता से चिढ़कर एक गोपी राधा से कहती है कर धनु लय किन चंद ही मारी तू हरुआए जाए मंदिर चढ़ी शशि सम्मुख दर्पण विस्तारी या ही भांति बुलाए मुकुर मही अति बल खंड खंड करी डारी। गोपियों का विरहोन मात कितना ही बड़ा हो उनकी बुद्धि बिल्कुल बच्चों की सी दिखाना स्वाभाविक नहीं जैसता। कविता में दूर की सूझ या चमत्कार ही सब कुछ नहीं है। पावस के घन गर्जन आदि वियोगिनी को संतापदायक होते हैं यह तो एक बंधी चली आती हुई बात है। सूर ने एक प्रसंग कल्पित करके इस बात को ऐसी युक्ति से रख दिया है कि इसमें एक अनूठापन आ गया है। ये कहते हैं कि पावस आने पर सखियां राधा को मालूम ही नहीं होने देती कि पावस आया है, ये और बातें बताकर उन्हें बहकाती रहती हैं। बात बूझत यो बहरावती सुनहु श्याम वह सखी सयानी पावस ऋतु राधा ही न सुनावती घन गरजत तो कहत कुशलमती गूंजत गुहा सिंह समुझावती नहीं दामिनी द्रुम दवा सैल चढ़ी फिर बयारी उलटी झर लावती नाही न मोर बकत पिक दादुर ग्वाल मंडली खगन खेलवाती। सुर को वचन रचना की चतुराई और शब्दों की क्रीड़ा का भी पूरा शौक था। बीच बीच में आए हुए कूट पद इस बात के प्रमाण हैं, जिनमें या तो अनेकार्थवाची शब्दों को लेकर या किसी एक वस्तु को सूचित करने के लिए अनेक शब्दों की लंबी लड़ी जोड़कर खिलवाड़ किया गया है। सुर की प्रकृति कुछ क्रीड़ाशील थी, उन्हें कुछ खेल तमाशे का भी शौक था। लीला पुरुषोत्तम के उपासक कवि में यह विशेषता होनी ही चाहिए। तुलसी के गंभीर मानस में इस प्रवृत्ति का आभास नहीं मिलता। अपने इसी शब्द कौशल की प्रवृत्ति के कारण सुर ने व्यवहार की कुछ पारिभाषिक शब्दों को लेकर भी एकाध जगह उक्तियां बांधी हैं, जैसे साँचो सो लिखवार कहावे, काया ग्राम मसाहत करी के जमा बांध ठहरावे, मनमत करे कैद अपनी में जान जहतिया लावे। काव्य में इस प्रकार की उक्तियां ठीक नहीं होती। आचार्यों ने अप्रतितत्व दोष के अंतर्गत इस बात का संकेत दिया है। सूर भी एक आध जगह ऐसी उक्तियां लाए हैं, पर यह प्रेम फौजदारी ऐसी पुस्तकों के लिए नमूने का काम दे गई हैं।